विराग विजय, विराग विजय किसको कहते हैं, शरीर में अनित्य अपरित्राण, यह शरीर अनित्य है और इसकी रक्षा नहीं की जा सकती, मरते समय कोई इसको बचा नहीं सकता। विनश्वर स्वभाव, नश्वर स्वभाव वाला, अशुचि अपवित्र है, त्रिदोष अधिष्ठित, व्याप पित्तर कफ इन तीन दोषों से अधिष्ठित है, सप्त धातु में रस रक्त आदि सात धातु से बना हुआ है, मलमूत्र आदि परिपूर्ण, मलमूत्र आदि से भरा हुआ है, अनवरत निश्चंदी निश्चंदित स्रोतो विलंब, नव द्वार इसके निरंतर झरते रहते हैं, अपवित्र पदार्थ इसमें से बहते रहते हैं, अति विभत्सम अत्यंत घृणित है, आधेयम ये शौचम अपि पूति गंधम, अगर इस शरीर का आधार लेकर के कोई पवित्र वस्तु भी आ जाए इसके पास तो पूति गंधी अपवित्र बन जाती, दुर्गंधित हो जाती है। सम्यक ज्ञानी जन वैराग्य हेतु भी, और सम्यक ज्ञानियों के लिए शरीर वैराग्य का कारण है, मिथ्या दृष्टियों को राग का कारण होता है। नास्त्यत्र किंचित कमनीयम, इस शरीर में कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। इंद्रिय सुखानी, इंद्रिय मुख्यानी, प्रमुख रसिकानी, इंद्रिय है प्रमुख जिनमें, ऐसे जो प्रमुख रसिक, क्रियावसान विरसानी, ये प्रारंभ में तो सरस लगते हैं इंद्रियों के विषय, लेकिन अंत में विरस हो जाते हैं। खूब शक्कर खाओ, मजे से खाओ और खूब आनंद लो, अंत में डायबिटीज का दुख भोगो, ऐसा रहता है। पराधीन आनी है, पराधीन भी रहते हैं, किम्पाक फल विपाक आनी, किम्पाक फल के समान विपाक वाले होते हैं। अनवस्थान प्रचुर भंगुराणी, अनवस्थान प्रचुर माने अस्थिर रहते हैं, नश्वर होते हैं, यावत यावत ईशाम रमणीयकम तावत तावत भोगिनाम तृष्णा प्रसंगो नवस्त, जैसे जैसे रमणीय वस्तुएं प्राप्त होती जाती हैं वैसे वैसे इच्छाएं तृष्णाएं बढ़ती ही रहती है, घटती नहीं है। ऐसा लगता है ना कि अमुक गाड़ी आ जाएगी तो उसके बाद तो मुझे किसी गाड़ी की जरूरत ही नहीं, लेकिन उसके बाद कोई नया मॉडल आ जाता है तो फिर मन भटक जाता है, कोई अंत नहीं है उसका। जैसे टॉर्च है ना, आप ऐसे करके चलो हाथ हिलाना मत, तो वो जितने कदम आगे बढ़ेंगे उतने कदम वो लाइट आगे जाएगी, उसी प्रकार आपको जितने कदम आप धारण करेंगे, जितने विषय आपको प्राप्त होंगे, इच्छा जो है वो आगे ही जाएगी किसी नई चीज पर, तो उसका कोई अंत नहीं है। यथाग्नि रिंधरी जल निधेर नदी सहस्रीण न तृप्ति, जिस प्रकार अग्नि में जितना भी ईंधन डालो वो शांत नहीं हो सकती, और समुद्र में कितनी भी नदियां समा जाए लेकिन समुद्र का पेट भरने वाला नहीं है, उसी प्रकार किसी प्राणी का विषयों से मन नहीं भर सकता, इंद्रिय सुखों से किसी को तृप्ति नहीं मिल सकती। दृष्टांत कितने अच्छे दिए, अग्नि का और समुद्र का, तो अपना मन भी अग्नि और समुद्र के समान है, उसमें ईंधन डालो विषय डालो तो मन की तृप्ति नहीं हो सकती, और फिर अगर समुद्र की उपमा दे दो तो फिर समुद्र में कितनी भी नदी हजारों नदियां आ जाए लेकिन समुद्र को संतुष्टि नहीं होती, उसी प्रकार अपने मन को हजारों विषय दे दिए जाए लेकिन विषयों से कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, ये कड़वा सच है। विषय मीठे लगते हैं लेकिन तृप्ति नहीं होती, ये एक कड़वा सच है। न तृप्ति रूप शांति, न तो तृप्ति होती और न शांति मिलती, दोनों बातें हैं। ऐहि कामतृक विनिपात हेतव, इस जन्म में और दूसरे जन्म में अपना इन विषयों के कारण हमेशा नुकसान ही होता है। तानि देहिन सुखानि इति मन्यन्ते, और संसारी प्राणी इनको सुख मान करके महादुख कारणानि, जो कि अनेक दुखों के बड़े बड़े दुखों के कारण हैं, अनात्मीयानि और अपने नहीं हैं, अनात्म नीनत्वाति दिष्टान्य अपि अनिष्टानि इति अदिष्टानि, ठीक है, आत्मा के लिए हितकारी नहीं है। आत्मनीन का अर्थ था आत्मा के लिए हितकारी, तो अनात्मनीन का मतलब आत्मा के लिए हितकारी नहीं होते। और इष्टानि अपि अनिष्टानि, इष्ट लगते हुए भी ये वास्तव में अनिष्ट होते हैं इंद्रियों के सुख। इति वैराग्य कारण विशेषण विशेषानुचिंतन, इस प्रकार से वैराग्य के कारणों का विशेष रूप से अनुचिंतन करना, ये विराग विचय नाम का धर्म ध्यान। अथवा संसार देह विशेष, संसार शरीर और विषयों में दुख हेतुत्वानित्य चिंतन, दुख के हेतु बने का और अनित्यता का चिंतन करना विराग चिंतन षष्ठम धर्म, ये छठा धर्म ध्यान विराग विचय। भव विचय किसको कहते हैं? सचित्ता चित्त मित मिश्र शीतोष्ण मिश्र समृत विवृत मिश्र भेदासु योनिषु, नौ प्रकार की योनियां होती है मुख्य, और जैरोय अंडज पोत पोतोपाद सम्मूर्छन जन्मनो जीवस्य, इन अनेक प्रकार के जन्म को धारण करने वाले जीव के भवात भवांतर संक्रमणी, एक भव से दूसरे भव में परिवर्तन करने पर इशुगति पाणिमुक्ता लांगलिका गोमूत्रिका चेती, जो गतियां होती हैं वो इशु गति, यानी इशु का अर्थ होता है बाण, बाण जब छोड़ दो तो सीधा जाता है, वैसे ही कभी जीव एक शरीर छोड़ के सीधे दूसरे शरीर में चला जाता है। फिर पाणिमुक्ता गति में क्या होता है कि हाथ में ऐसे आपने मोती रखा और थोड़ा सा हाथ टेढ़ा कर दिया तो ऐसे जाकर ऐसे मुड़ जाता है, मतलब एक मोड़े वाली गति होती है, ये दूसरी गति होगी। फिर लांगलिका, लांगलिका माने जो हल होता है, उस हल में ऐसे दो मोड़े रहते हैं, तो इस प्रकार जीव अगर कभी दो मोड़े लेकर के कहीं चला जाए किसी दूसरी पर्याय में, लांगलिका गति होगी। और गोमूत्रिका जो गति होती है तीन मोड़े वाली गति होती है। तत्र इन गतियों का खुलासा कर दिया फिर आगे, तो चार समय के अंदर तो जीव पहुंच जाता है अपने ठिकाने पर, कहीं भी जाना हो उसको पूरे तीन लोक में। एवं अनादि संसारे संसारे भ्रमतो जीवस्य, इस प्रकार अनादि संसार में भ्रमण करने वाले जीव के गुण विशेषानुपलब्धि तस, गुण विशेष की उपलब्धि न होने के कारण तस्य भव संक्रमण, उसका भव में भ्रमण चल रहा है। निरर्थकम व्यर्थ में भटक रहा है, भूल आपको भरमत वादी, वादी यानी व्यर्थ। इत्येवम आदि भव संक्रमण दोषानुचिंतनम वा, इस प्रकार से संसार भ्रमण के दोषों का बारंबार चिंतन करना, अथवा चतुर्गति भव भ्रमण योनि चिंतनम, चार गतियों के जो भव हैं उनमें भ्रमण का और 84 लाख योनियों का चिंतन करना भव विचय सप्तम धर्म, ये भव विचय नाम का सातवां धर्म ध्यान है। यथावस्तुक मीमांसा संस्थान विचय तत् द्वादश विधम, यथावतित वस्तित जो है सच्चाई जो है उसकी मीमांसा करना है ना, विचार विमर्श करना, वो संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान है। उसके 12 भेद हैं, अनित्यत्व अशरणत्व संसार एकत्व अन्यत्व अशुचित्व आश्रव संवर निर्जरा लोक बुद्ध दुर्लभ धर्म स्वाख्यात है। इस प्रकार ये धर्म ध्यान हो गया है संस्थान विचय। फिर आज्ञा विचय क्या है? अतीन्द्रिय ज्ञान विषय ज्ञातुम चतुर्षु ज्ञानेषु बुद्धिशक्ति अभावात्, अतीन्द्रिय विषय जो है केवल ज्ञान का विषय, उसको जानने के लिए चार अथवा चार ज्ञानों में उसकी बुद्धि की शक्ति का अभाव होता है, इसलिए परलोक बंध मोक्ष लोकालोक सदसद वेदनीय धर्मा धर्म काल द्रव्य आदि पदार्थेषु सर्वज्ञ प्रामाण्यात्, सर्वज्ञ की प्रमाणता के कारण तत्प्रणीत आगम कथित कथितम अविततम, उनके द्वारा प्रणीत जो आगम है उसमें जो कहा गया है पदार्थों का रूप स्वरूप वह अवितत है माने सत्य है। न सम्यक दर्शन स्वभावत्वात् अविततम, वितत यानी सत्य होता है, अवितत यानी झूठ, अवितथम न वो झूठा नहीं है, आगम में जो कुछ भी कहा गया वो झूठा नहीं है सच्चा है। सम्यक दर्शन स्वभावत्वात् निश्चय चिंतन, सम्यक दर्शन का स्वभाव होने के कारण निश्चय चिंतन करना सर्वज्ञ आगम प्रमाणीकृत, सर्वज्ञ भगवान के आगम को प्रमाण करके अन्य अत्यंत परोक्षार्थावधारण, अत्यंत परोक्ष पदार्थों का भी निश्चय कर लेना, वाह आज्ञा विजय नवम धर्म ध्यान, आज्ञा विजय नाम का नौवां धर्म ध्यान। फिर आखिरी दसवां जो है हेतु विजय, हेतु विजय का अर्थ क्या है? आगम विप्रतिपत्तो नैगमादि नय विशेष गुण प्रधान भावोपनय दुर्धर्षस्य दुर्धर्धश दुर्धश दुर्धर्षस्याद्वाद शक्ति प्रतिक्रियावलंबिनः, आगम में कभी विप्रतिपत्ति आने पर बात ठीक से समझ में ना आने पर नैगम आदि नए विशेष के गुणों को लेकर उनको प्रधान बनाकर जो भाव है और उपनय है और दुर्धर्ष स्वाद्वाद शक्ति है जिसको कोई हरा नहीं सकता, उसकी प्रक्रिया के माध्यम से, प्रतिक्रिया के माध्यम से जो अवलंबन लेकर तर्कानुसार रुचि है, जो तर्क के अनुसार रुचि रखने वाले पुरुष हैं, उसके पुरुषस्य स्वसमय गुण पर समय दोष विशेष परिच्छेद। स्वसमय माने अपने जिनेन्द्र भगवान के आगम में और पर समय यानी अन्य मतियों के द्वारा प्रतिपादित शास्त्रों में जो गुण दोष है उसके ज्ञान से, यत्र गुण प्रकर्ष है जहाँ गुणों की अधिकता है तत्र अभिनिवेश है, वहीं अपना आग्रह रखना श्रेयान वो हितकारी है। माने जैनागम में अपना आग्रह रहे तो वो हितकारी है और अन्य मतों में अगर मन भटक जाए तो फिर उसमें गुण दोषों का विचार करके देखो तो फिर अहितकारी है। इस प्रकार स्याद्वाद तीर्थकर प्रवचन है, स्याद्वाद रूप जो तीर्थंकर भगवान का प्रवचन है उसके प्रति पूर्वापर विरोध हेतु परिग्रहण सामर्थ्यन, पूर्व और अपर माने बाद में, पूर्वापर जो विरोध होता है ना उसके हेतु को परिग्रहण करने की जो सामर्थ्य आ जाती है, जैसे अब अन्य मति के वचन आप सुनोगे तो फिर वहाँ पर आपको पकड़ में आ जाएगा कि ये देखो यहाँ पहले कुछ कह रहे थे और अभी यहाँ कुछ कह रहे थे। जैनागम का अभ्यास करने से ये बात आ जाती है अपने अंदर संस्कार में कि देखो इसमें कहीं कोई बात पुरानी बात से खंडित नहीं हो रही है, और जैसे ही आप दूसरा देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा देखो ये बात यहाँ से खंडित हो गई। तो उसकी सामर्थ्य से समवस्थान गुणानुचिंतन, समवस्थान गुणों का अनुचिंतन करना हेतु विचय दशमं धर्म ध्यान, हेतु विचय नाम का दसवा धर्म ध्यान होता है। सर्वमेतद् धर्म ध्यान, ये सारा धर्म ध्यान पीत पद्म शुक्ल लेश्या बलाधानम, पीत पद्म और शुक्ल लेश्या के निमित्त से होता है, बलाधान का अर्थ निमित्त है। अविरत आदि सराग गुणस्थान भूमिकम, अविरत को आदि लेकर के जब तक सराग अवस्था है वहां तक के होता है। द्रव्य भावात्मक, द्रव्य और भावात्मक जो सप्त प्रकृति क्षय कारण है, सात प्रकृतियां होती है दर्शन मोह संबंधी, उनके क्षय का कारण है। आ अप्रमत्तात् सातवें गुणस्थान तक होता है। अंतर्मुहूर्त काल परिवर्तन, अंतर्मुहूर्त काल के बाद परिवर्तन होता है। परोक्ष ज्ञानत्वात्, क्योंकि परोक्ष ज्ञान जो होता है अंतर्मुहूर्त से ज्यादा किसी जगह स्थिर नहीं रहता। क्षयोपशमिक भाव, स्वर्गापवर्ग गति फल संवर्तनीयम, स्वर्ग और मोक्ष इन दो गतियों को फल रूप से संवर्तित करने वाला है, प्रदान करने वाला है। शेषैक विंशति भाव लक्षण मोहनीय उपशमक क्षय निमित्तम, बाकी जो 21 प्रकार के मोहनीय कर्म के भेद हैं उनके उपशम अथवा क्षय में निमित्त बन जाता है। तत्पुनः और वह धर्म ध्यानम आभ्यंतरम बाह्यम च, वो अंतरंग और बाह्य दो प्रकार का धर्म ध्यान होता है। सहज शुद्ध परम चैतन्य शालिनी, सहज शुद्ध जो परम चैतन्य से शोभित, निर्भर आनंद मालिनी भरपूर आनंद के समूह युक्त, भगवती भगवान निजात्मनि अपनी आत्मा में उपादेय बुद्धिं कृत्वा, उपादेय बुद्धि करके पश्चात फिर अनंत ज्ञानोहम मैं अनंत ज्ञान रूप हूँ, अनंत सुखोहम मैं अनंत सुख स्वरूप हूँ, इत्यादि भावना रूप हूँ, इत्यादि भावना रूप जो आभ्यंतर धर्म ध्यान उचित है, जो ध्यान होता है उसको आभ्यंतर धर्म ध्यान कहा जाता है। पंच परमेष्टि भक्त्यादि तदनुकूल श्रुतानुष्ठानम बहिरंग धर्म ध्यानम भवति, पंच परमेष्टियों की भक्ति आदि और तदनुकूल जो श्रुतानुष्ठान है स्वाध्याय है वो बहिरंग धर्म ध्यान होता है। तथा उसी प्रकार पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीतम चतुर्विधम ध्यानम आभ्यंतरम धर्मं कथ्यते, पदस्थ ध्यान पिंडस्थ ध्यान रूपस्थ ध्यान और रूपातीत, इस प्रकार चार प्रकार का अभ्यंतर धर्म ध्यान भी कहा जाता है। पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम पिंडस्थम स्वात्मचिंतनम रूपस्थम सर्वचिद्रूपम रूपातीतम निरंजनम, पदस्थ ध्यान जो होता है वो मंत्र वाक्य में स्थित रहता है, पिंडस्थ जो होता है वो अपनी आत्मा में चिंतन रूप रहता है, और रूपस्थ जो होता है सर्वचिद्रूप का चिंतन होता है, और रूपातीत जो होता है वो निरंजन होता है। पदान्यालंब्य पुण्यानि योगिभिर्यद्विधीयते तत्पदस्थम मतम ध्यानम विचित्रणय पारगैः, पदों का आलंबन लेकर योगी जन जिसका ध्यान करते हैं पवित्र पदों का आलंबन लेकर वो पदस्थ ध्यान कहा जाता है, विचित्र अनेक प्रकार के नयों में जो पारगामी हुए हैं ऐसे ज्ञानी साधुओं के माध्यम से। तदिया था उसका खुलासा कर रहे थे कि अब मंत्रों का वर्णन बहुत सुंदर वर्णन है, 35, 16, 56 चतुर्ग मेघंच जव जायेह परमेठि वाचयाणम अन्नं च गुरुव एसेण अन्नं च गुरुव एसेण। 35 अक्षर 16 अक्षर 6 अक्षर 5 अक्षर 4 अक्षर 2 अक्षर 1 अक्षर इनका जप करना चाहिए, इनका ध्यान करना चाहिए। और ये अन्नम परमेष्ठि वाचयाणम, ये परमेष्ठियों के वाचक हैं। अन्य भी ऐसा कोई परमेष्ठि वाचक मंत्र मिल जाए गुरु के उपदेश से तो उसका भी जप और ध्यान कर लेना चाहिए। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सद्वसाहूणम, ये 35 अक्षराणि सर्वपदानि भण्डिन्ते। ये 35 अक्षरों का मंत्र हो गया। फिर 16 अक्षरों वाला मंत्र कौन सा? अरहंत सिद्ध आयरिय उवज्झाय साहू, ये 16 अक्षर का मंत्र हो गया। वा अथवा ये प्राकृत भाषा है, अब संस्कृत में देखिए 16 अक्षर का मंत्र कौन सा है? अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्यो नमः। एतानि 16 अक्षराणि नाम पदानि भण्डिन्ते, ये 16 अक्षर वाले नाम पद कहे जाते हैं। अरहंत सिद्ध एतानि 6 अक्षराणि, ये 6 अक्षर वाले हो गए। अरहत सिद्धयोर नाम पदे द्वे भण्डिन्ते भण्येते, इस प्रकार अरहत सिद्ध ये दोनों के नाम पद आ गए, इसमें 6 अक्षर हो गए। पण, पण यानी 5, पण मेरु नंदीश्वर पढ़ते हैं ना आपने? अभी आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पंच बोलना चालू कर दिया, पंच नहीं है, पण मेरु नंदीश्वर जिनाले। क्या होता है कि सभी विधाओं का ज्ञान हो और फिर कोई संपादन करे तो शुद्ध प्रति छपति है, और छंद का ज्ञान न हो और फिर वो पण को त्रुटि समझकर पंच बना दे, सुधार दे, तो वो छंद का सत्यानाश हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ है, लोगों ने पंच मेरु कर दिया है, सब मटिया मेट कर दिया। पण मेरु नंदीश्वर, देखो पण है कि नहीं शब्द, अब प्राकृत पढ़ी हो तो पता चले, और प्राकृत से निकटवर्ती है हिंदी भाषा, तो पन बोलने से भी कोई नुकसान नहीं है। पन का अर्थ 5 होता है, असी आउसा है ना। एदानी 5 अक्षराणी आदि पदानी भण्डिन्ते, ये 5 अक्षर जो है आदि पद होते हैं, यानी पंच परमेष्ठियों के पहले अक्षर ले लो, अ सी आ उ सा। चतु, चतु का मतलब 4, अरहंत 4 अक्षर हो गए। एकदम अक्षर चतुष्टय अरहत हो नाम पद, ये अरहत भगवान का नाम पद हो गया। दुग, दो ले लो, दो सिद्ध अरहम ऐसे दो ले लो। वा, इत्यक्षर द्वयस्य सिद्धस्य अरहतो वा नामादि पदम, सिद्ध अथवा अरहंत के नामादिक पद हो गए, अरहम भी अरहत के नाम पद के अंतर्गत लिया गया। अ, एक अक्षर कैसे लेना, अ एक अक्षर अरहत आदि पदम, ये अरहत भगवान का आदि पद, अथवा ओम, ओम एक इत्येक का अक्षर पंच परमेष्ठिनाम आदि पदम, 5 परमेष्ठियों का आदि पद हो गया। तत्कथम ही तुझे, वो कैसे? अरहंता अशरीरा आयरियात उवज्झया मुनिनो पडमक्खर निपण्डो ओंकारो पंच परमेठी। अरहंत का आ ले लो, अशरीर का आ ले लो, आचार्य का आ ले लो, उवज्झाय का ऊ ले लो, और मुनि का म ले लो। तो ऐसे पहले पहले अक्षरों को लेकर निष्पन्न कर दो तो ओम बन जाता है, पंच परमेष्ठी का वाचक है। सवर्णे सह दीर्घ ऊ ओ, अब सवर्ण के साथ दीर्घ हो जाने से क्या हुआ? अरहंत का अ, अशरीर का अ और आचार्य का आ, तीनों को मिलाने से आ बना, और फिर सामने ऊ आ गया, ऊ के साथ मिलाने पर ओ बन गया। फिर मोनुस्वार म जो था, हलंत म ले लिया था, तो हलंत म का मोनुस्वार व्यंजन है, विरामे वा, इस व्याकरण सूत्र से म को ऊपर बिंदी डाल दी ओ के ऊपर, इस प्रकार ओम बन गया। इत्यादि ना निष्पद्यते, एतेषां पदानां सर्व मंत्र वाद पदेषु, इन पदों का सर्व मंत्रवाद के पदों में मध्य सारभूतानां, जो सारभूत है वो इहलोक परलोक इष्ट फल प्रदानां, इस्लोक और परलोक में इष्ट फल को प्रदान करने वाले हैं। अर्थम ज्ञात्वा, इन मंत्रों का अर्थ समझ करके पश्चात, फिर अनंत ज्ञानादि गुण स्मरण रूपेण, अनंत ज्ञानादि गुण स्मरण रूप से वचनोच्चारणेन च, वचनों के उच्चारण पूर्वक जापम कुरुत, जाप करो, बहुवचन दिया है सबके लिए, कह रहे हैं कि हे भव्य जनों तुम लोग जाप करो इन मंत्रों का अर्थ समझ करके। तथा उसी प्रकार शुभोपयोग रूप त्रिगुप्त अवस्थायाम, शुभोपयोग रूप जो तीन गुप्ती की अवस्था होती है उसमें मौनेन ध्यायेत, ध्यायत मौन पूर्वक इनका ध्यान भी करो। पुनरपि कथम भूताना, वचन उच्चारण से करोगे तो फिर उसको जप कहेंगे और मौन से करोगे तो उसको ध्यान कह सकते हैं। पुनरपि कथम भूताना पंच परमेष्टि वाचक वाचकानाम, और कैसे होते हुए पंच परमेष्टि वाचक पद तो बोलते हैं अनंत ज्ञानादि गुण युक्तोर हद वाच्यो विधेय, अनंत ज्ञानादि गुणों से युक्त अरहत भगवान का जो वाच्य, ऐसा कोई शब्द ले लो, इत्यादि रूपेण अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु वाचका नाम, इत्यादि रूप से अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु के वाचक जो भी अन्यदपि कोई दूसरा भी पद हो सकता है, द्वादश सहस्र प्रमित पंच नमस्कार ग्रंथ कथित क्रमेण, 12,000 ग्रंथाग्र प्रमाण, 12,000 को आप 32 से गुणित कर दो कितने होंगे, उतने अक्षरों वाला कोई ग्रंथ है जिसमें नमस्कार मंत्र का मात्र विस्तार है, नमोकार मंत्र का, तो उस क्रम से नहीं, ये तो समझ लो लघु सिद्ध चक्रम, ये लघु सिद्ध चक्र का परिमाण बता दिया, और बृहत सिद्ध चक्रम इत्यादि देव वार्चन विधानम, इस प्रकार से ये सब बड़े बड़े सिद्ध चक्र विधान में ये सारी बातें आती है। अभी तो जो नया सिद्ध चक्र विधान छपा है वहां से जयपुर से, उसमें कई बीजाक्षर उनने अलग कर दिए हैं, कई पदों में उनने परिवर्तन कर दिया है, उसको आप दोनों साथ में रख करके मिलाओगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो एक किताब देखोगे तो अच्छी मतलब ऊपर की पैकिंग देख करके आप प्रभावित हो जाओ, दोनों साथ में रखो पुरानी वाली और नई प्रति को, तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना परिवर्तन किया है। और परिवर्तन करना क्या है, ये अपनी बुद्धि है, पंचम काल के जीव हैं, क्या मालूम बुद्धि किस समय क्या कपट कर बैठे, इसलिए अपनी बुद्धि के भरोसे न चल करके जिनवाणी के अनुसार अपनी बुद्धि को चलाना चाहिए, अपनी बुद्धि के अनुसार जिनवाणी में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने पलट करके मंत्रों के जो अक्षर थे और फिर जो परिमाण था वो सब उन्होंने परिवर्तित कर दिया। सिद्ध चक्र विधान की पुस्तक आप उठा के देख सकते हैं, और जो पुराना सिद्ध चक्र विधान संस्कृत में छपा है वो सबसे सही है, और कायदे से अगर संस्कृत आती हो किसी को तो फिर उसको कोशिश करना चाहिए कि वही विधान करें, क्या आनंद आता है। और अगर कोई ऐसा विद्वान मिल जाए उनके अर्थ भी करते जाए तब तो आप समझ लो कि वैसा सिद्ध चक्र विधान समझ लो कभी जीवन में मिल जाए तो मिल जाए भाग्य से, इतना सुंदर। अब हम कहाँ कराएंगे, अब तो अब रामायण हो गई पूरी भाई। इस प्रकार ये सब तथा ही उसका खुलासा क्या है, यो भव्य जो भव्य जीव नाभि मंडले षोडश दल युक्त कमले दले दलम दलम प्रति षोडश स्वर श्रेणी भ्रमंतीन चिंतित, अपने नाभि मंडल में 16 पंखुड़ी वाला एक कमल बना ले, ध्यान करके ऐसे आंख बंद करके 16 पंखुड़ी वाला कमल बना ले नाभि में अंदर, और उसके एक एक पंखुड़ी पर 16 स्वर की एक पंक्ति बना दे, अ आ ई ई उ ऊ री 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 री, ये री री कैसे रखा, देखिए ये भी एक अलग डिजाइन है, ली ली ए आई ओ औ अम अह, 16 स्वर हो गए। तो इनको भ्रमंतीन चिंते, ऐसे घूमती हुई चिंतन करो, वो 16 पंखुड़ियाँ, पंखुड़ियाँ वही है लेकिन ये अ यहाँ आ गया, फिर ऐसे आ गया, इधर आ गया, ऐसे करके क्रम से उसको घूमते हुए ध्यान करना है। फिर तथा हृदय, फिर हृदय स्थल पर चतुर्विंशति पत्र संयुक्त कमले, 24 पंखुड़ियों वाले कमल पर पंचविंशति ककार आदि मकारांतान व्यंजनान स्मरे, क को आदि लेकर के म तक जो 25 व्यंजन होते हैं उनका स्मरण करो, क ख ग घ ङ च छ झ झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ ग न प फ व म, इस प्रकार से चिंतन करना। अब 24 पंखुड़ियां हैं और बीच में एक कर्णिका है, उसमें रख दो एक वर्ण को, कर्णिका पे रख दो और बाकी 24 पंखुड़ियों में, कितना ध्यान लगता है ऐसा करने में, अभी करके देखो तो मजा आएगा। लेकिन वो एकाग्रता चाहिए मन की, तो इसमें अगर एकाग्रता ना हो ना तो फिर कमल से कुछ और बन जाए, स्कूटर बन जाए, फिर और कुछ बन जाए, टेलीविजन। त तथा उसके बाद वदन कमल, मुख कमल में अष्ट दल सहित, आठ दल वाला जो कमल है उसमें शेष यकारादि हकारांतात वर्णन प्रदक्षिणन चिंतित, य से लेकर ह तक जितने वर्ण हैं उनको प्रदक्षिणा रूप से चिंतन करना। यर लव श ष स ह, इनका चिंतन करना। उच्चारण ही वैसे जटिल है थोड़े से। प्रदक्षिणन चिंतित, ऐसे घूमते हुए प्रदक्षिणा देते हुए उनका चिंतन करना। इमाम प्रसिद्ध सिद्धांत प्रसिद्धां वर्ण मातृकां ध्यायेत्य स श्रुताम्भोदेह पारं गच्छेत् च तत्फलात्। इस ध्यान को जो कर ले, पूरी वर्णमाला का तीन कमलों में ध्यान करने वाला श्रुत केवली पद को प्राप्त होता है, ये इसका फल है। आगामी भवों में कभी श्रुत केवली पद को प्राप्त कर ले। अथ मंत्र पदाधीशम सर्वतत्वैक नायकम, अथ मंत्र पदाधीशम सर्वतत्वैक नायकम आदि मध्यांत भेदेन स्वर व्यंजन संभवम ऊर्ध्वाधो रेप। अच्छा, ये दूसरा एक मंत्र दे रहे हैं। ऊर्ध्वाधो रेप संरुद्धम सकलम बिंदु लांछितम अनाहत युगम तत्व मंत्र राजम प्रचक्षते। रह्रम, ऊपर भी एक रेप है उसका पहले उच्चारण करना, र से प्रारंभ करना, फिर ह के बाद फिर से र बोलना और एक अनुस्वार रम, ये उसका उच्चारण। र से प्रारंभ करके फिर र इसको बाद में बोलना रम, ये उसका उच्चारण। माला देवासुर नतम मिथ्या दुर्बोध ध्वांत भास्करम शुक्ल मूर्धस्त चंद्रांशु कलाप व्याप्त दिग्मुखम। अब इसको अपन बाद में देखें क्योंकि आगे एक अलग विधि दी जा रही है, विधि के लिए थोड़ा समय लगता है। अभी रम तक के पहुंचे समझ। अतः मंत्र पदाधीशम सर्वतत्वैक नायकम आदि मध्यांत भेदेन स्वर व्यंजन संभवम ऊर्ध्वाधोरेप संरुद्धम सकलम बिंदु लांछितम अनाहति युतम तत्व मंत्र राजम प्रचक्षते। इसको मंत्र राज कहा जाता है, मंत्र के पदों का अधीश है, सर्व तत्वों का अद्वितीय नायक है, आदि मध्य और अंत के भेद से स्वर व्यंजन से उत्पन्न है और ऊपर नीचे जिसमें र है और सकलम कला सहित बिंदु लांछितम एक बिंदु का चिन्ह जिसमें लगा हुआ है, अनाहत युगम युतम अनाहत से युत है, ऐसा जो तत्व मंत्र राज उसको कहते हैं। ये आकृति जो बनाई है वो थोड़ी सी त्रुटिपूर्ण है, ज्ञानाणव में इसकी आकृति और विशेष बनाई है। अनाहत एक आकृति होती है, उसी के लिए बोल रहे हैं, यंत्र में अनाहत रहती कई जगह, इसमें नहीं बनाई है। नीचे जो हिंदी अनुवाद में उन्होंने ब्रैकेट्स में लिखा ना, उसमें वो बिंदी ठीक बनाई है, चंद्र बिंदी। रेप के बाद ही लगना चाहिए। वैसे तो रेप से कोई वो नहीं, रेप का उच्चारण पहले होता है इसमें, फिर नीचे जो रकार है उसका उच्चारण बाद में होगा। रम देवासुर नतम मिथ्या दुर्बोध ध्वांत भास्करम शुक्ल मूर्धस्त चंद्रांशु कलाप व्याप्त दिग्मुखम हेमाब्ज कर्णिकासीनम निर्मलम दिक्षुखांगणे संचरंतम चंद्राभम चिनेन्द्र तुल्य मूर्जितम ब्रह्मा कैश्चिद्धर कैश्चिद् बुद्ध कैश्चिन्महेश्वर शुभ सार्वस्तथैशानो वर्णो यं कीर्तितो महान् मंत्रमूर्तिं किलादाय देवदेवो जिनः स्वयं सर्वज्ञ सर्वगः शान्तः साक्षादेश व्यवस्थितः ज्ञान बीजं जगद्वंद्यं जन्मृत्युचरापहं अकारादि हकारान्तं रेतुबिन्दुकलाङ्कितं भुक्तिमुक्त्यादिदातारं स्रवन्तमृताम्बुभिः मंत्रराजमिदं ध्यायि धीमान् विश्वसुखावहं नासाग्रे निश्चलं वापि भ्रूलतान्ते महोज्ज्वलं तालुरन्ध्रेण वायातं विशन्तं वामुखाम्बुजे सकृदुच्चारितो येन मन्त्रोऽयं वा स्त्रीकृतः हृदि तेनापवर्गाय पातेयं स्वीकृतं परम् एवं महामन्त्रराजं यो ध्यायति स कर्मक्षयं कृत्वा मोक्षत्वं प्राप्नोति अर्हम्। अर्हम मंत्र की महिमा बतलाते हुए इतने सारे काव्यों में बताया कि इसका जो ध्यान करता है वो मोक्ष सुख को प्राप्त करता है और मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिए कर्मों का क्षय कर लेता है। तथा हकार मात्रम सूक्ष्म चंद्र रेखा सदृशम शांति कारणम यो भव्य चिंते सर्व स्वर्गेशु देवो महर्दिको भवे। तो ह मात्र का अगर चिंतन करे सूक्ष्म चंद्र रेखा के समान, माने बहुत पतली रेखा में चंद्रमा जैसी सफेद रेखा द्वारा ह इसका ध्यान करें तो वह स्वर्गों में महर्दिक देव बन सकता है। यो भव्य ओंकारम पंच परमेष्ठी प्रथमाक्षर उत्पन्नम देदीप्यमानम चंद्रकला बिंदुना सितवर्णम। जो मनुष्य जो भव्य ओंकार का पंच परमेष्ठी के प्रथम अक्षरों से उत्पन्न हुआ जो ओंकार है उसका देदीप्यमान चंद्रकला बिंदु के साथ सितवर्ण सफेद रंग में धर्मार्थ काम मोक्षदम हृदय कमल कर्णिका मध्यस्थम चिंतामणि समानम चिंतयति। अपने हृदय कमल की कर्णिका के बीच चिंतामणि के समान चिंतन करता है, ध्यान करता है, सभव्य सर्व सौख्यं लगते वह भव्य सभी सुखों को प्राप्त हो जाता है। ओम एवं मंत्र राजन शत्रु स्तंभने सुवर्णाभ, शत्रुओं का स्तंभन करना हो तो सुवर्णाभ, विद्वेषे कृष्णाभ, विद्वेष हो जाए तो उसके लिए कृष्णाभ, वशीकरण में रक्तवर्ण, फिर पापनाशन शुभ्रम, सर्व कार्य सिद्धिकरण चिंतिये। इस प्रकार भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि के लिए इसका चिंतन किया जाता है। अब ये भी जब कभी कोई ऐसी परिस्थिति जैसे सतीत्व का हनन होना होने की स्थिति आ जाए तो फिर ओंकार का सुवर्णाभ में ध्यान करने पर वो जो शत्रु बन करके उसके मतलब शील का हरण करना चाहता है तो ओंकार का सुवर्णाभ में स्वर्ण आभा के साथ चिंतन करने पर उसका स्तंभन हो जाएगा। फिर विद्वेषे कृष्णाभ, अब कोई अपने प्रति आसक्त होकर या फिर किसी प्रकार से विद्वेष करके अपने धर्म को क्षति पहुंचाना चाहता है अथवा और किसी प्रकार से हानि करना चाहता है तो फिर कृष्णाभ ओंकार का चिंतन करने से उसमें विद्वेषण हो जाएगा, फिर उनका जो संगठन है वो भंग हो जाएगा तो वो कभी भी अनिष्ट कार्य सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकते। फिर वशीकरणे रक्तवर्णम, अब वशीकरण करना हो तो रक्तवर्ण का चिंतन करो। जैसे मान लो गुरु के ऊपर उपसर्ग आ रहा है तो उपसर्ग करने वाले को अगर अपने वश में करना हो तो फिर ऐसी परिस्थितियों में अब देखिए इसका वशीकरण स्तंभन उच्चाटन आदि का शुभ प्रयोग भी किया जा सकता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि लौकिक स्वार्थ के लिए इनका प्रयोग किया जाता हो। फिर पापनाशन शुभ्रम, पापों का नाश करना हो तो ओंकार का शुभ्र बिल्कुल सफ़ेद चमकीले सफ़ेद रंग में ध्यान करना। सर्व कार्य सिद्धिकरम चिंतित, ये सर्व कार्यों को सिद्ध करने वाला ओंकार है उसका इन इन प्रकार से ध्यान करने पर इन कार्यों की सिद्धि होती है। तथा इसी प्रकार पंचगुरु नमस्कार लक्षण मंत्रमूर्जितम चिंतयेच्च जगज्जन्तु पवित्रीकरण क्षमम। पंचगुरु के नमस्कार, पंच गुरुओं को जो नमस्कार है वही जिसका लक्षण है ऐसा मंत्र, उत्कृष्ट मंत्र जगत जंतु को पवित्र करने वाला, पवित्र करने में सक्षम, उसका ध्यान करना चाहिए। और सुरत बिरमल चंद्रावे दलाष्टक विभूषिते कंची तत्कर कासीनम मंत्रम सप्ताक्षरम स्मरित। सात अक्षरों के मंत्र का इस प्रकार से स्मरण करना चाहिए। स्फुरायमान निर्मल चंद्र के समान आठ दलों से विभूषित कंज यानी कमल पर तत्कर्णिका सीनम मंत्रम सप्ताक्षरम से उसकी कर्णिका यानी बीच वाले पीले भाग पर आसीन विराजमान सात अक्षरों वाले मंत्र का स्मरण करना चाहिए। फिर दिग्दलेशु ततोन्येषु विदिक पत्रेषु अनुक्रमान सिद्धादिकं चतुष्कंच दृष्टिबोधादिकं तथा। तो क्या करना है फिर, दिग्दलेशु दिशाओं में जो दल माने पंखुड़ियां आती है उन पर, ततोन्येषु उनसे अन्य जो विदिक पत्रेषु विदिशाओं के पत्र माने पंखुड़ियां हैं उन पर अनुक्रमात क्रमशः सिद्धादिकम चतुष्कम सिद्धादिक चार का विन्यास करना है और इधर दृष्टिबोधादिकम चतुष्कम तो उसका क्रम बता रहे हैं। ओम नमो अरहंताणम कर्णिका पर फिर नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रयाणम नमो लोहे सप्तम पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर इन चार दिशाओं में और फिर बीच के जो विदिशाओं के पत्र हैं पंखुड़ियाँ वहाँ पर दर्शन ज्ञान चारित्र और तप इन चार का विन्यास कर लिया। अपराजित मंत्रो यम दर्शन ज्ञान चारित्र तपांति यह मंत्र अपराजित है और दर्शन ज्ञान चारित्र और तप इनको लेकर के श्रीयमात्यंत किम प्राप्ता योगिनो ये चकेचन अमुमेव महामंत्रम ते समाराध्य केवलम। इसी महामंत्र की अच्छी तरह से आराधना करके अब तक जितने योगी सिद्धि को प्राप्त हुए हैं आत्यंतिक मोक्ष लक्ष्मी को जिन्होंने प्राप्त किया है वो कर पाए हैं इसी मंत्र की आराधना से। अनेनैव विशुद्ध्यन्ति जन्तव पाप पंकिताः अनेनैव विमुच्यन्ते भवक्लेशान् मनीषिणः। इसी मंत्र के द्वारा पाप पंख से कलंकित प्राणी पवित्र होते हैं और इसी मंत्र के द्वारा संसार के क्लेश से ज्ञानी जन विमुक्त हो जाते हैं। एतद् व्यसन पाताले भ्रमत संसार सागरे अनेनैव जगत सर्व मुद्रित्य विद्रितं शिवे। एतद् व्यसन पाताले इस संकट रूपी पाताल में भ्रमत संसार सागरे संसार समुद्र में भ्रमण करते हुए अनेनैव इसी मंत्र ने सर्वम जगत सारे जगत को उद्धृत्य विदितम शिवे उठा करके मोक्ष में पहुंचाया है यानी जितने जीव मोक्ष गए हैं वो इसी मंत्र की कृपा से गए हैं। ओम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रयाणम नमो लोहे सप्तम और दर्शन ज्ञान चारित्र तपांसी। कृत्वा पाप सहस्राणि हत्वा जंतुशतानि च अमुं मंत्रं समाराध्य तिर्यं चोपि दिवंगताः। हजारों पाप करके और सैकड़ों जीवों को मार करके इस मंत्र की समाराधना करने वाले तिर्यंच देवगति को प्राप्त हो गए। इस श्लोक का तात्पर्य विपरीत ग्रहण नहीं करना है क्योंकि इस श्लोक का ऐसा तात्पर्य नहीं है कि हजारों पाप करते रहो और सैकड़ों जीवों को मारते रहो, ये तात्पर्य नहीं है। कुछ जीवों ने जो ऐसे कार्य कर चुके थे अंत में डमोकार मंत्र को प्राप्त होकर देवगति को प्राप्त किया है तो इस मंत्र की महिमा बता रहे हैं। इस मंत्र की महिमा बताकर ये नहीं कहना चाह रहे हैं, ऐसा उपदेश नहीं कर रहे हैं कि ऐसा करते रहो तुम और फिर डमोकार मंत्र से तुम तिर जाओगे, ये इसका अभिप्राय नहीं है। तथा यो भव्य मस्तके भालस्थले मुखे कंठे हृदय नाभोच प्रत्येक मष्टदल कमलम तन्मध्य तक कर्णिकाम विधाय। उसी प्रकार जो भव्य मस्तक पर भालस्थल में मुख में कंठ में हृदय में नाभि में एक एक पर अष्टदल कमल बनाकर और उनके बीच कर्णिका में विधाय प्रत्येकम पंच नमस्कारा फिर पंच नमस्कारों को वहाँ पर बनाकर पंचत्रिंशत वर्णों पे 35 वर्णों से युक्त कमलम प्रति नव संख्योपेतान जपेत एक एक कमल में नौ नौ संख्याओं में जाप कर ले चिंतयति ध्यान करता है तो अवरोहण आरोहणेन द्वादश कमलेषु ऊपर और नीचे ऐसे 12 कमलों में एकीकृता नमस्कारा पूरे इकट्ठे करोगे नमस्कार तो अष्टोत्तर शत प्रमा भवन्ति। 108 हो जाते हैं। मस्तक, भाल, मुख, कंठ, हृदय, नाभि। मस्तक, भाल, मुख, कंठ, हृदय और नाभि। और प्रत्येक अष्टदल कमल, 6 स्थानों पर 8 दलों वाले कमल बनाकर और फिर उनकी कर्णिकाओं की रचना करके 35 वर्णों वाले पंच नमस्कार मंत्र, उनको एक एक कमल में 9 संख्याओं में जाप करना है। यानी 8 पंखुड़ियों में और 1 कर्णिका में ऐसे 9 हो जाएंगे। और बता रहे हैं कि फिर अवरोहण माने ऊपर से नीचे आते समय करना है, फिर आरोहणे में फिर नीचे से ऊपर जाते समय, तो ऐसे ऊपर से नीचे आएंगे तो 6, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो फिर नए सिरे से नीचे वाला पहला कमल हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करने से बहुत बढ़िया विधि है। बहुत ही सुंदर। तो इस प्रकार 12 कमलों में इकट्ठे करने पर नमस्कार अष्टोत्तर शतप्रमा भवन्ति, 108 नमस्कार मंत्र हो जाएंगे। और 108 होने पर तत्फलम आ, उसका फल बदला गया, शतमष्टोत्तरं चास्य शुद्ध्या चिंतयन मुनि। 108 नमोकार मंत्र का त्रिशुद्ध्या मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक चिंतन करने वाले मुनि भुंजानोपि चतुर्थ से प्राप्नोत्यविकलम फलम। भोजन के दिन भी यानी जिस दिन उनने आहार लिया उस दिन भी चतुर्थ से अविकलम फलम अखंड उपवास का फल प्राप्त करते हैं। मुनि है लेकिन मस्तके वधने कंठे हृदय नाभिमंडले ध्याये चंद्र कलाकारे योगी प्रत्येकम अंबुजं। मस्तक पर, मुख में, कंठ में, हृदय में, नाभिमंडल में, चंद्रकला के आकार में योगी एक एक अंबुज यानी कमल का ध्यान करे। स्मर मंत्र पदोद्भूताम महाविद्याम जगन्मुताम गुरुपंचक नामोत्थ षोडशाक्षर राजिताम। फिर मंत्र पदों से उत्पन्न हुई महाविद्या जो जगत के द्वारा स्तुत्य है और गुरु पंचक के नाम से उत्पन्न होने वाले 16 अक्षरों से विराजित है, शोभित है, उसका ध्यान करना है। कैसा ध्यान है? अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः। षोडशाक्षर विद्या, ये 16 अक्षरों वाली विद्या होती है। अस्या शतद्वयं ध्यानी जपेन्नैकाग्र मानस अनिच्छन्नप्यवाप्नोति चतुर्थ तपसः फलम्। इसका 200 जप करने वाले एकाग्र मन युक्त जो ध्यानी साधु हैं वो न चाहते हुए भी एक उपवास का फल प्राप्त कर लेते हैं। अब ये तो विद्याओं का तो अभी पता नहीं, विद्या शब्द तो लिखे ही वो जो 1200 विद्याएं हैं वो विद्या है या फिर ये कोई अलग विद्या है, कैसे कहते हैं? विद्याम षड्वर्ण संभूता मजय्याम पुण्यशालिनी जपन चतुर्थमभ्येति फलं ध्यानी शतत्रयम्। फिर षड्वर्ण संभूताम 6 अक्षरों से उत्पन्न हुई अजय जिसको जीता न जा सके ऐसी पुण्यशालिनी जो विद्या है उसका ध्यानी जो ध्यानी साधु जपन जाप करते हैं तो वो जाप करते हुए कितना जाप करेंगे? शतत्रयम जपन, 300 जाप करेंगे। 6 अक्षरों वाली विद्या का 300 बार जाप करेंगे तो चतुर्थम फलम अभ्येति, एक उपवास के फल को प्राप्त हो जाते हैं। अरहंत सिद्ध, उसका नाम अरहंत सिद्ध अथवा अरहंत साहु, अरहंत साहु भी है। चतुर्वर्णमयम मंत्रम चतुर्वर्ग फलप्रदम, चतुःशतीं च पंयोगी चतुर्थस्य फलं लभेत। लभेत नहीं बनता, भजेत होना चाहिए। चतुर्थस्य फलं भजेत। लभेत शब्द ही नहीं है संस्कृत भाषा में। चतुर्वर्णमयम मंत्र, चार वर्ण वाला जो मंत्र है वो चतुर्वर्ग फलप्रद, चार वर्गों के फल को प्रदान करने वाले हैं। और चतुःशतीं, 400 बार उसको जपन योगी, जो योगी जपते हैं वो चतुर्थस्य फलं भजे, एक उपवास के फल को प्राप्त होते हैं। वो मंत्र है अरहंत, चार अक्षर। वर्णद्वयं श्रुतस्कंधे सारभूतं शिवप्रदं ध्याये जन्मोग्र जन्मोद्भवक भवाशेष क्लेश निर्मूलन क्षमम। फिर दो अक्षरों का श्रुतस्कंध का सारभूत मोक्ष प्रदान करने वाला मंत्र है, उसका ध्यान करना चाहिए। कैसा है वो मंत्र? बोले जन्मोद्भव, जन्म यानी संसार से उत्पन्न होने वाले अशेष क्लेश, समस्त क्लेश यानी कष्टों का निर्मूलन क्षमम, निर्मूलन करने में सक्षम। सिद्ध अरहम वा, सिद्ध ले लो दो अक्षरों का मंत्र, अथवा अरहम ले लो। अवर्णस्य सहस्रार्धम जपन्नानंद संवृत प्राप्नोत्तेकोपवासस्य निर्जराम निर्जिताशयः अह। ये जो अह नाम का मंत्र है, एक अक्षर का मंत्र है, इसका अगर जाप सहस्रार्धम 500 बार जप करे, लेकिन आनंद संवृत, आनंद पूर्वक करना चाहिए।